تفسير. آیت نمبر 47 سے 50 تک. یہاں پر اللہ رب العزت نے لیڈروں اور لیڈروں کے پیروکاروں کا حال جو جہنم میں ہوگا اس کا ذکر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب جہنمی جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے اور دنیا میں ان میں سے جو لوگ کمزور تھے اور طاقت اور جو امیر لوگ تھے, تو کمزور لوگ طاقتور اور امیروں کے ڈر سے ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. کمزور لوگ ان سے کہیں گے کہ دنیا میں تم نے ہمیں اپنی پیروی پر مجبور کر رکھا تھا, تمہیں اپنی لیڈری پر, سرداری پر, قیادت پر بڑا ناز تھا, تو کیا آج آپ جہنم کے عذاب کا کچھ حصہ اپنے اوپر لے لیں گے؟ کیا آج آپ ہمارے کچھ کام آ سکیں گے؟ کیا آپ آگ کے عذاب کو ہم سے کچھ ہلکا کر دیں گے؟ اور دوسری طرف جو ہے وہ جو سردار ہیں, جو کہ قائد ہیں, جو متکبرین ہیں, جو دنیا میں اللہ, اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام کو جھٹلاتے رہے, وہ جہنم کی کھائیوں میں جل رہے ہوں گے, وہ شدید ترین عذاب میں ہوں گے, اور وہ اس وقت کہیں گے کہ اگر ہم کچھ آپ کے کام آ سکتے تو آج ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے, آج ہم جہنم میں جل رہے نہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حق کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے اور آج ہم آپ کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے, تو سرداروں کی بے بسی اور پیروکاروں کی مجبوری, اس پس منظر میں آپ ان آیات کو سمجھیے. آیت نمبر 47 سے 50 تک. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ, اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ اذکرو, اور یاد کرو, اور وہ وقت جب يَتَحَاجُّونَ, جب وہ حجت بازی کریں گے, جب وہ جھگڑیں گے, آپس میں جھگڑیں گے, قائد اور ان کے پیروکار, اس وقت جہنمی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے. فناری, دوزخ میں, آگ میں. فیقولو, پھر کہیں گے, ادوفاؤ, کمزور لوگ, اس وقت جو ہے جو کمزور لوگ ہیں, جو ادنا درجے کے لوگ ہیں, وہ کہیں گے, للذین, ان لوگوں کو, استکبرو, جو بڑے تھے, جو دنیا میں متکبر بن کر جیے, وہ ان لوگوں سے کہیں گے, انا کنا لکم تبعن. یہ خاص بات ہے, اس کو آپ سرکل کریں. کمزور لوگ جو پیروکار ہیں, جو دنیا میں متی بن کر رہے, وہ اپنے لیڈروں سے جن کے پیچھے وہ آنکھیں بند کر کے دنیا میں چلتے رہے, ان سے کہیں گے, انا کنا لکم تبعن, بے شک ہم تھے تمہارے ہی لیے پیروی کرنے والے, ہم تو تمہارے تابع تھے, ہم تو تمہارے پیچھے چلتے رہے. فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار, کیا پس تم جہنم کی آگ کی تکلیف کا کچھ حصہ اس سے ہم کو بچا لو گے؟ فہل انتم, کیا پس تم مغنون, مغنون جو ہے اب دیکھیے کہ اس کا بھی روٹ غنی سے ہے, اور معنی ہے یہاں پہ اس کے کہ بے نیاز کرنا, تو کیا تم ہم کو بے نیاز کر دو گے, کیا تم ہم سے دور کر دو گے, دفع کر دو گے؟ انا, ہم سے نصیبن, نصیب جو ہے یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو مقدر ہو, جو نصب ہو, تھوڑا ہو یا زیادہ, وہ معین حصہ جو قسمت میں لکھا ہوا ہے. تو ہمارے لیے جو عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے, तो उस अजाब में से कुछ आप कमी कर सकते हैं। قال الذين استكبروا, फिर उस वक्त वो बड़े बनने वाले, वो किब्र करने वाले जवाब देंगे, इन्ना कुल्लुन फीहा, वो ये जवाब देंगे कि हम सब यहां एक हाल में हैं, इन्ना बेशक हम, कुल्लुन सब, यानी आप भी और हम भी, हम सब कहां पे हैं, फीहा इस दोजख में, हा की जमीर जो है वो जहन्नुम के लिए आई है कि हम सब इस दोजख में हैं, इन अल्लाह कद हकम बैन अल इबाद, बेशक अल्लाह ने फैसला कर दिया है बंदों के दरमियान। वो उस वक्त कहेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दरमियान फैसला कर दिया है, जो जन्नत में जाने वाले थे उनको तो जन्नत में भेज दिया, और जो जहन्नुम में जाने वाले थे उनको जहन्नुम में डालने का फैसला कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई चारा-कार नहीं है, अब अल्लाह के फैसले के खिलाफ किसी को चूं चरा करने की कोई जुर्रत नहीं है। क्यों? इन अल्लाह कद हकम बैन अल इबाद, अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है। प्यारी बहनों, वहां का फैसला और वहां की कोर्ट और उसका जज अल्लाह रब्बुल इज्जत होगा, और अल्लाह जो है वो हक के मुताबिक फैसला कर देगा। तो यहां पे जहन्नमियों की आपस में फरियाद का जिक्र है। आखिरत में ईमान, तौबा, अमल, उसका कोई मकाम नहीं है, वहां तो सिर्फ रिजल्ट का वक्त है। वकाल अल्लज़ीन फिन्नारी, अब वो लोग जो के आग में होंगे, जहन्नम में होंगे, वो कहेंगे ली खजानते जहन्नमा, जहन्नम के दरोगों से। अब वो लोग जो हैं वो जहन्नुम के दरोगा से इल्तजा करेंगे। जहन्नुम में अजाब पाने वाले बड़े छोटे सरदार और उनके जो पैरोकार हैं, अब वो अजाब की सख्तियों से जब तंग आ जाएंगे, परेशान होंगे, अब आपस में सब नाउम्मीद हो चुके हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, आप जरा तसव्वुर करें, अब वो नाउम्मीद होकर वहां पे जहन्नुम पर जो निगरान फरिश्ते हैं उनसे दरखास्त करेंगे, इल्तजा करेंगे, फरियाद करेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे कि उदउ रब्बकुम, दुआ करो अपने रब से, युखफिफ अन्ना यौमन मिनल अजाब, कि वो हल्का कर दे, वो तखफीफ कर दे, वो कमी कर दे हमसे सिर्फ एक दिन का अजाब। आप जरा तसव्वुर करें कि उस वक्त वो कहेंगे कि आप अपने रब से दुआ करें कि हमारे अजाब में बस एक दिन की कमी कर दे, एक दिन की। फरिश्ते पूछेंगे, पालू, वो कहेंगे अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल बय्यिनात लेकर नहीं आते रहे थे? क्या तुम्हारे पास अल्लाह के भेजे हुए जो नबी थे वो दावत ईमान लेकर नहीं आए थे? क्या उन्होंने दलाइल के जरिए अल्लाह के दीन की सदाकत को तुम पर साबित नहीं किया था? क्या तुम्हें रसूलों ने शिर्क से रोका नहीं था? तो उस वक्त जहन्नमी जवाब देंगे, कालू बला, हाँ क्यों नहीं, कालू फदरू। फिर जहन्नुम के जो फरिश्ते हैं, जो निगरान हैं, वो कहेंगे फदू, बस तुम खुद ही जो है वो दुआ करो, तुम खुद क्यों नहीं अल्लाह से दुआ करते, तुम दुआ मांगो। वमा दुआ उल काफिरीन इल्ला फी दलाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं और काफरों की दुआएं तो जाया ही हो जाने वाली हैं। अब आप देखिए कि यहां पर जो है दलाल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है किसी चीज का गुम हो जाना, किसी चीज का मिक्स अप हो जाना। तो उस वक्त जो है ये बताया जा रहा है कि जब वो एक तरफ कहेंगे कि अच्छा तुम खुद क्यों नहीं दुआ करते, तो ये दरअसल जो है वो फरिश्तों का उन जहन्नमियों को जो है वो जैसे उन पे तंज करना है, क्योंकि वहां तो दुआ करने का कोई वक्त है ही नहीं ना। और काफिरों के लिए और कुफ्र करने वालों के लिए फरिश्तों को दुआ करने की तो इजाजत भी नहीं है ना। तो कहते वो फरिश्ते कहेंगे, अच्छा अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारा जी चाहता है तो खुद दुआ कर लो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारी दुआओं का कोई नतीजा नहीं होने वाला। काफरों की दुआएं आखिरत में बेअसर हैं, क्योंकि दुआ बगैर ईमान के कबूल नहीं हो सकती। और ईमान का और दुआ करने का मौका तो दुनिया में था, वो तुमने गंवा दिया। अब आखिरत में अगर तुम दुआ मांगोगे भी तो उसका अब कोई फायदा नहीं है। वमा दुआउल काफिरीना, और नहीं है काफिरों की दुआएं इल्ला फी दलाल, मगर बेकार। फिर आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत नंबर 51 में अपने रसूलों के बारे में जो है वो अपनी सुन्नत बताते हैं कि अल्लाह की अपने रसूलों के बारे में क्या सुन्नत रही, कि रसूल और उनकी अतात करने वालों की अल्लाह मदद करता है, दीन को गालिब करता है, और जो दुश्मन होते हैं, जो मुखालफीन होते हैं, वो कत्ल होते हैं, उनको दुनिया के अजाब से दोचार होना पड़ता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो कयामत के दिन जो जजा और सजा मिलने वाली है उसका जो है वो एहसास दिलाया है। इन्ना लनंसुरु रसूलना, यकीनन हम मदद करते हैं अपने रसूलों की। वल्लजीन आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए हैं, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि यह हमारा तरीके कार रहा है, यही हमारी सुन्नत है कि यकीन जानो कि हम अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की मदद इस दुनिया की जिंदगी में लाजमन करते हैं। अब देखें यहाँ पे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान लाने वालों को तसल्ली दी जा रही है, क्योंकि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी में जिन हालात से गुजर रहे थे, आपको जो मुश्किलात और परेशानियों का सामना था और उसके साथ ईमान लाने वालों को भी, तो एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाकर जो है तसल्ली दी गई, ये बात बताई गई कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कि जलीलुल कदर पैगंबर थे, उन पर कितनी तकलीफें गुजरी, कितनी मुसीबतें आई, कितनी परेशानियों का उनका सामना करना पड़ा, बिल आखिर बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फतह अता की। तो इसी तरह आप जो मुश्किल दिन है इनको सब्र के साथ गुजारे, आप हिम्मत करें और अल्लाह ताला आपकी और आप पर ईमान लाने वालों की लाजमन मदद करेगा इस दुनिया की जिंदगी में। और ऐसा फिर हुआ भी कि फिर एक वक्त ऐसा आया कि चश्मे तसव्वुर में आप देखें कि चश्मे फलक ने जो है वो फतह मक्का के नजारे भी देखे। वयौमा यकूमुल अशहाद, और उस रोज भी जो है अल्लाह ताला मदद करेंगे। वयौमा, और वो दिन, यकूमु खड़े होंगे, अल अशहाद, जब गवाह, और अल्लाह ताला उस दिन भी मदद करेंगे जब गवाह जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो यकूमुल अशहाद ये कौन सा दिन है? ये कयामत का दिन है। अब आप देखेंगे अशहाद जो है शहीदों की जमा है, गवाह को कहते हैं, जैसे शरीफ अशराफ की जमा होता है, शरीफ अशराफ की जमा होती है ना। तो कयामत वाले दिन फरिश्ते और अंबिया कराम जो हैं वो गवाही देंगे। फरिश्ते इस बात की गवाही देंगे कि या अल्लाह, पैगंबरों ने तेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाया था लेकिन इनकी उम्मतों ने झुठलाया। और अंबिया गवाही देंगे कि हमने लोगों तक, अवाम तक अल्लाह तेरे दीन का पैगाम जो है वो पहुंचा दिया था। और पीछे भी आप पढ़ चुकी हैं कि इंसान के जिस्म के अजाब भी गवाही देंगे, और लेकिन वो उस दिन इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। और एक गवाही जो है वो उम्मत मुहम्मदिया की भी होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उम्मत मुहम्मदिया ने क्या अल्लाह का दीन जो था वो लोगों तक पहुंचाया। तो यहाँ पे ये जो लफ्ज है यौमा यकूमुल अशहाद, ये बहुत ही जो है वो सख्त बात है कि कयामत के दिन जो है अल्लाह ताला हर नबी और रसूल से गवाही दिलवाएगा कि इसने लोगों को क्या तालीम दी थी, उम्मतों से सवाल होगा कि उन्होंने अपने रसूलों को क्या जवाब दिया था, फरिश्ते लोगों के अमाल के रजिस्टर के साथ पेश होंगे, गवाहियां देंगे कि लोगों ने कैसे अमाल किए थे। लोगों, वो बड़ा ही सख्त दिन होगा। आप देखें कि विटनेस, गवाहियां इसके तस्वुर से ही रोंगटे खड़े होते हैं और रूह कांप जाती है। यौम ला यनफउ ज़ालिमीना माज़िरतुहुम वलहुम लअनतु वलहुम सूउद्दार। यहाँ पे तीन बातें कही जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि उस दिन जालिमों को इनकी माजरत कुछ भी फायदा ना देगी। अब देखें कि दुनिया की जिंदगी में भी लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो बचना चाहते हैं और एक्सक्यूजेस पेश करते हैं, माजरतें पेश करते हैं और माजरतें बनाई जाती हैं, उजर तराशे जाते हैं। लेकिन कयामत के दिन जो है लोग एक्सक्यूज करना चाहेंगे, लेकिन वो यौमुल अशहाद होगा, वो जो है वो गवाहियों का दिन होगा और गवाहियां इतनी वाजे कतई रोशन होंगी कि जो झूठे हैं उनके झूठ वाजे तौर पर सामने आएंगे। बदकिस्मत लोगों ने अपनी जानों पर जो जुल्म ढाया होगा उनका उजर कुछ भी फायदा नहीं देगा। जैसे पैरोकार जो हैं वो अपनी गुमराही का जो है वो जिम्मेदार अपने लीडरों को बनाना चाहेंगे, औलाद अपने वालदैन को, वालदैन औलाद को, दोस्त दोस्त को, रिश्तेदारों को, जिसने जिसको फॉलो किया होगा वो कहेगा कि मैंने तो इसकी बात मानी थी। लेकिन किसी का उजर सुना नहीं जाएगा, किसी का उजर सुना नहीं जाएगा, सबको अपने अमाल की सजा जो है उसको भुगतना होगा, क्योंकि वो दिन जो है वो हिसाब किताब का दिन होगा, वो दिन जो है वो पकड़ दकड़ का दिन होगा। यौमा यकूमुल अशहाद, वहां सब खड़े हुए होंगे। फिर दूसरी बात बताई जा रही है कि वलहुमुल लानतु, और वहां पे इनकार करने वालों पर जो है वो लानत पड़ेगी, वो अल्लाह की रहमत से महरूम, वो अल्लाह की रहमत से महरूम होंगे। नंबर तीन, वला हम सू उद्दार, और बदतरीन ठिकाना उनके हिस्से में आएगा। तो उनका जो अंजाम होगा वो बहुत ही बुरा होगा। आपने पीछे भी पढ़ा ना कि गज़वे तबूक में जब मुनाफिक शिरकत नहीं कर सके थे तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में माजरतें पेश की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि इनके उजर कबूल ना करना, ये मुनाफिक हैं। अल्लाह के रसूल तो नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह ताला तो जानते हैं ना। दुनिया में भी ऐसा होता है ना, बच्चा स्कूल से देर से आता है, आप पूछते हैं कि आप क्यों देर से आए, बच्चा कोई ना कोई बहाना बना देता है, कभी सच भी होता है लेकिन बहाना भी बना देता है। स्टूडेंट होमवर्क नहीं करता, टीचर पूछता है बच्चा कोई ना कोई बात कह देता है, यानी जब उसने नहीं किया होता तो वो उजर तराशता है। इसी तरह आपने घर के अंदर कई काम करने होते हैं और आपस में तकसीम किए हुए होते हैं, लेकिन जब आपस में एक दूसरे से पूछते हैं तो बहुत सा काम किसी ने नहीं किया होता तो वो क्या करते हैं, वो कोई ना कोई बहाना उजर जो है वो तराश देता है। लेकिन कयामत के दिन कोई उजर जो है वो काम नहीं आएगा। और झूठे जो है वो अपने चेहरों से, अपनी पेशानियों से, अपनी बातों से पहचाने जाएंगे और उनके जिस्म के अज़ा उनके खिलाफ गवाही देंगे, तो उनके हिस्से में लानत पड़ेगी और बदतरीन ठिकाना उनके हिस्से में आ जाएगा। तो लोगों, क्या चीज फायदा देगी? यहाँ पे जो बहुत खास बात है वो ये कि सिर्फ सच्चाई फायदा देगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दुनिया की जिंदगी में जो है वो सच्चा बनना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सच्चे थे, वो सूरत यासीन वाला जो मर्द मोमिन था वो सच्चा था। और कौन सच्चा है? आयशा सिद्दीका, जिनकी गवाही कुरान ने दे दी। और सिद्दीकीन कौन है? जो कि सच की गवाही देते हैं और अपनी अमली जिंदगी में सदाकत का साथ देते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए और कुरान जो सच है उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं, ईमान लाने वालों को तसल्ली देते हैं, फरमाते हैं वलकद एतैना मूसल हुदा, आखिर देख लो कि मूसा अलैहिस्सलाम की हमने रहनुमाई की थी फिरौन का, जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला हुआ था तो हमने मूसा को छोड़ तो नहीं दिया था, हमने कदम कदम पर इनकी रहनुमाई की थी यहां तक कि वो कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गए। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मक्का की गलियों में और मक्का वालों का जुल्म और सितम सहने के लिए आपको तन्हा छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ये जालिम जो आपके साथ सुलूक कर रहे हैं, आप मत भूलें कि हम आपकी पुश्त पर हैं और हम ही हैं जो कि आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। तो यहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, ईमान लाने वालों को तसल्ली दी जा रही है। और इससे एक बात ये भी पता चलती है कि आप में से जो लोग हक पर चलते हैं, दीन पर अमल करते हैं, तो आप परेशान ना हो, अल्लाह आपके साथ है। क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे यही बता रहे हैं कि देख लो, मूसा की रहनुमाई भी तो हम ही ने की थी। वह औरसना बनी इसराइल अल किताब, और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बना दिया। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को तौरात दी थी तो उसका वारिस बना दिया। हुदाउ व जिक्रा लिउलिल अलबाब, जो अक्ल व दानिश रखने वालों के लिए हदायत और नसीहत थी। तो तौरात का जिन लोगों ने इनकार किया वो नाकाम हुए, और जो लोग तौरात पर ईमान लाए और कुरान, जिन्होंने तौरात की रोशनी में अपनी जिंदगी का सफर तय किया, हुदन व जिक्रा, यहाँ पे हुदन व जिक्रा जो है ये तौरात की जो है वो सिफात है। तौरात हदायत देने वाली थी, नसीहत करने वाली थी, और अलबाब लुब इसका वाहिद है, मगज को कहते हैं, और अक्लमंदों के लिए ये इस्तेमाल की जाती है सिर्फ। तो तौरात जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि अक्लो दानिश रखने वाले जो हैं उन्होंने तौरात से नसीहत हासिल की। तो इससे क्या बात पता चल रही है कि मक्का की मुश्किलात में ईमान लाने के नतीजे में जो मसाइब जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़े थे मुसलमानों को, तो बताया जा रहा है कि आप भी कुरान की तरफ जो है वो रुजू करें। फसबिर इन्ना वादल्लाही हक, पहली बात ये कही कि पस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबर कीजिए। ये पूरी बात का खुलासा है। पहले तसल्ली दी कि आप अपनी दावत पर जमे रहें, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप सबर कीजिए क्योंकि अल्लाह का वादा जो है वो बरहक है। अल्लाह का वादा क्या है कि हम अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की इस दुनिया में मदद किया करते हैं, तो आप सबर करें और अल्लाह मदद करेगा। नंबर दो, वस्तग़फिर लिज़म्बिका, और अपने कसूर की माफी चाहो। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर कसूर से क्या मुराद है। यहाँ पे कसूर से मुराद बेसब्री की वो कैफियत है जो मुखालफत के उस माहौल में अपने साथियों की मजलूमी देख देख कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पैदा हो रही थी। आप चाहते थे जल्दी से कोई मौजजा ऐसा दिखा दिया जाए जिससे कुफार कायल हो जाए, या अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी जल्दी मदद आ जाए जिससे मुखालफत का ये तूफान ठंडा हो जाए। अब आप देखें कि ये ख्वाहिश कोई गलत ख्वाहिश तो नहीं थी ना, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आला मकाम है इस पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो सब्रो इस्तकामत से काम लें, और आपकी जो ये जरा सी कमजोरी है इस पर भी आप अपने रब से माफी मांगें, आप सब्र की वो मजबूत चट्टान बन जाएं और किसी तरह के हालात में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अपने रब की अपने रब की फिर तस्बीह और हम जो है वो बयान करते रहें। तीसरी बात कही, वसब्बिह, और तस्बीह बयान कीजिए बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की हम्द के साथ, बिल अशी वल इबकार, बिल अशी वल इबकार सुबह और शाम। अब आप देखिए कि बिल अशी वल इबकार, ये आपने पहले भी पढ़ा है, जैसे आपने जो है वो पीछे पढ़ा है आयत नंबर 46 में अशियन का लफ्ज। अशियन कहते हैं जवाले आफताब से लेकर रात के इब्तदाई हिस्से को, और जोहर से इशा तक आप देखें तो चार नमाजें आ जाती हैं। तो कहा कि आप जो हैं इस दौरान अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह बयान करें। दूसरा लफ्ज है इबकार का। इबकार जो है बा काफरा, सुबह की फौ फटने से तुलुवे आफ्ताब तक का वक्त, जैसे बाकिरा कमारी को भी कहते हैं ना, इसी तरह सुबह का जब आगाज होता है किसी ने कोई काम भी नहीं किया होता तो उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और इससे मुराद एक इसके मानी है कि आप सुबह शाम अल्लाह की हमदो सना बयान करें और तस्बीह करें, और दूसरे इसके मानी है कि मसलसल यानी सुबह शाम में तमाम औकात जो है वो आ जाते हैं। और इससे मुराद है कि एक तो ये कि जब भी मुश्किलात पेश आती हैं तो मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए हमदो तस्बीह वो जरिया है जिससे अल्लाह के लिए काम करने वालों के अंदर हिम्मत पैदा होती है। और ये हमदो सना जो है ये मसलसल होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उन मखसूस औकात में होनी चाहिए जो कि नमाज के औकात हैं। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 56 से 85 तक, अब ये सूरत अल मोमिन की आखिरी आयात हैं और इसमें भी सब्रो इस्तकामत की तलकीन की जा रही है, साथ ही फतह की खुशखबरी दी जा रही है और कुरैश के लीडरों को दुनिया और आखरत दोनों में अजाब की धमकी दी गई है। और आप पढ़ेंगे कि बीच बीच में तौहीद और कयामत के दलाइल दिए गए हैं, कायनात से, इंसान के वजूद से और कुछ इखलाकी दलाइल हैं। आइए इस मुख्तसर तारुफ की रोशनी में अगली आयात को पढ़ते हैं। इन अल्लज़ीना युजादिलून फी आयातिल्लाही बिगैर सुल्तानिन अताहुम, हकीकत यह है कि जो लोग किसी सनद हुज्जत के बगैर जो उनके पास आई हो अल्लाह की आयात में झगड़े कर रहे हैं, इन फी सुदूरहिम इल्ला किबरुन, इनके दिलों में किब्र भरा हुआ है। तो वो लोग जो बगैर किसी हुज्जत के, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सनद के अल्लाह की आयात में झगड़े करते रहते हैं, तो इसकी वजह क्या है? इन फी सुदूरहिम इल्ला किब्रुन, मगर बड़ाई नहीं है, बल्कि बात क्या है, इन नहीं फी सदूरहिम इनके दिलों में इल्ला किब्रुन मगर किब्र बड़ाई। तो ये जो वो झगड़ा करते हैं तो इसकी वजह ये है कि इनके दिलों में तकब्बुर भरा हुआ है। ये वो लोग जो तौहीद और कुरान के बारे में बहसे करते हैं, इसकी असल वजह, इसकी असल बीमारी तकब्बुर है। तकब्बुर का जो है वो यहाँ पे अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि अहले मक्का के झगड़ने की और बहस करने की वजह जो है वो उनका गुरूरे नफ्स है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशवाई रहनुमाई को मानने के लिए तैयार ना हुए, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करें। फरमाया मा हुम बेबालिगी, मा नहीं हुम वो बेबालिगी पहुंचने वाले इस तक। तो यहां पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये लोग अपने मकसद तक पहुंचने वाले नहीं है। ये समझते हैं कि हमें लीडर बना दिया जाएगा और ये नाराज है कि हमें रसूल क्यों नहीं बनाया गया, और ये अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मा हुम बिबालिगी, ये अपने मकसद को हासिल करने वाले नहीं है। फस्तईज बिल्लाह इन्नहु हुवा समीउल बसीर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि बस अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ देखता और सुनता है। अब यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अल्लाह की पनाह मांगने के लिए जो है वो कहा जा रहा है। अब आप देखें कि पीछे मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फिरौन की धमकियों के मुकाबले में अल्लाह की पनाह मांगी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, आपने सूरत अल मोमिन आयत 27 में पढ़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, वकाल मूसा इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्ल मुतकब्बिर ला युमिनु बियौमिल हिसाब। फिर आप देखें कि वो जो मर्द मोमिन था जिसने बड़ी जुर्रत के साथ फिरौन के दरबार में हक बात को पेश किया था, और उसने भी जो है वो क्या किया था कि जब फिरौन ने उस मर्द मोमिन को धमकी दी थी तो उस मर्द मोमिन ने भी तो यही बात कही थी ना कि मैं अपना मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, उफव्विजु अमरी इलल्लाह। तो उसने भी यही ऐलान किया था कि मैंने अपना मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और वो मर्द मोमिन जो था उसने अल्लाह को अपना वकील बनाया और इस तरह वो डरा नहीं। तो इससे ये बात पता चलती है कि सरदाराने कुरैश की धमकियों के नतीजे में आप क्या करें, आप अल्लाह की पनाह में आए और फिर बेफिक्र होकर अपना काम करते रहें। तो आज भी फिर मुझे और आपको क्या करना है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, अल्लाह की बंदगी करनी है, अल्लाह की अताअत करनी है, लेकिन अल्लाह की पनाह में आना है। और हमें मुआवजात पढ़ने चाहिए, सूरत नास है, सूरत फलक है, और इसी तरह जो है वो और बहुत से ऐसे इस्तियाज़े की दुआएं हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी बहुत अच्छी दुआ है, इन्नहु हुस्समीउल बसीर, वो सब कुछ देखता और सुनता है। तो यहाँ पे ये बात भी बताई जा रही है कि जब आप अल्लाह की पनाह मांगेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो आपकी दुआओं को सुनने वाला है, और उसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ देखने वाला है। फिर आप देखिए तो यहाँ पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो दलाइल दिए हैं, और ये जो दलाइल हैं ये दलाइल हैं आखिरत के दलाइल, आखिरत के अकीदे के, खल्कुस समावाती वल अर्दी अकबरु मिन खल्किन नासी वलाकिन अक्सर नासी ला यालमून। आसमानों और जमीन का पैदा करना इंसानों को पैदा करने की बनिस्बत यकीनन ज्यादा बड़ा काम है मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। कुफार ये समझते थे कि मरने के बाद इंसान दोबारा जो है वो जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ी ही नामुमकिन और मुश्किल बात है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस खुदा ने ये आसमान और जमीन बनाए और इंसानों को पैदा करने की निस्बत आसमान और जमीन का पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, तो जो रब ये कर सकता है तो वो आखिरत के दिन तुम्हें दोबारा पैदा कर सकता है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, मगर अक्सर लोग जो हैं वो जानते नहीं हैं। तो लोग क्या करते हैं, इनकार करते हैं। जब अल्लाह आसमान और जमीन को बगैर नमूने के पैदा कर सकता है तो यकीनन इंसानों को दूसरी बार पैदा करने पर कादिर है। तो ये दलील दी है अल्लाह ताला ने कि कयामत आकर रहेगी और अल्लाह पैदा करेगा सबको और फिर हिसाब किताब होगा। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला ने ईमानों कुफर और मोमिन और काफिर का फर्क बयान किया है, फरमाया वमा यस्तविल आमा वल बसीर, और बराबर नहीं हो सकते अंधा और देखने वाला। तो जिस तरह एक अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते, बिल्कुल इसी तरह मोमिनीन और अहले कुफर बराबर नहीं हो सकते। मोमिन अपने नूरे बसीरत के जरिए से अल्लाह की निशानियों पर गौर करता है और अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, अल्लाह पर ईमान ले आता है। तो मोमिन ऐसा है जैसे कोई आंखें रखने वाला, जैसे कोई देखने वाला। और जो काफिर है वो क्या करता है? वो नूरे बसीरत से महरूम होता है। इसके सामने हजार निशानियां गुजर जाए, हजार दलाइल पेश कर दिए जाए, उसे कोई फायदा नहीं होता। वो उन सारी निशानियों पर अंधा और बहरा बनकर, बहरा और गूंगा बनकर रह जाता है। والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वाले किए, ये लोग यानी ईमानदार और स्वाले लोग नंबर दो, वलल मुसीउ और बदकार, ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं हो सकते, बिल्कुल इसी तरह से ईमान लाने वाले और अमले स्वाले करने वाले और वल मुसीउ सू से है बुराइयां करने वाले, ये बराबर नहीं हो सकते। बद किरदार लोग बराबर नहीं हो सकते। कलीलम्मा ततज़क्करून, मगर तुम लोग कम ही समझते हो। तो यहां पर अल्लाह ताला मिसालों के जरिए से बता रहे हैं कि मुजरिम और मुत्तकी दोनों का जब किरदार मुख्तलिफ है तो इनका अंजाम एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए कि इनकी जिंदगी मुख्तलिफ थी। तो अब आइंदा जो हिसाब किताब होने वाला है उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी मुख्तलिफ ही निकलेगा। तो कलीलम्मा ततज़क्करून, फरमाया कि तुम लोग जो हो वो कम ही सोचते हो, बहुत कम समझते हो। इन्न साता लआतियतुन ला रैब फीहा, बेशक कयामत की घड़ी आने वाली है। अब आप देखें कि असाता कयामत का ये नाम है, ला आतियतुन, इसके माने क्या है कि जरूर आने वाली है। ला रैब फीहा, इसके आने में कोई शक नहीं है। वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यूमिनून, मगर अक्सर लोग जो है वो जानते नहीं है। अब यहां पे बताया जा रहा है कि कयामत आकर रहेगी और लोग जो है उसके आने का इनकार कर रहे हैं। और लोग कैसे इनकार करते थे कि वो उसके लिए कोई भी तैयारी नहीं करते थे। जैसे बाज लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हम तो मानते हैं कि कयामत आएगी, लेकिन वो कयामत के लिए कोई भी तैयारी नहीं करते। वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यूमिनून, मगर अक्सर लोग इसको इस पर ईमान नहीं रखते। तो इससे ये बात पता चलती है कि आखरत पर ईमान का जो नतीजा ये है कि फिर आखरत की तैयारी की जाए। आयत नंबर 60, आयत नंबर 60 सूरत अल मोमिन, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि अल्लाह से मांगने के लिए किसी वसीले की जरूरत नहीं है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मुझसे मांगो कि मैं तुम्हारी दुआएं जो है वो कबूल करूं। वकाला रब्बुकुम, और कहा तुम्हारे रब ने, सुभान अल्लाह, यानी तुम्हारा रब ये कहता है उदउनी, पुकारो मुझसे, मांगो मुझसे, अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, उनका जवाब दूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, वो लोग जो के तकबर करते हैं, अन इबादती मेरी इबादत से, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जरूर वो जलीलो खार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अब यहां से जो है वो तौहीद का मजमून शुरू हो रहा है और यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तवज्जो दिलाई है कि अल्लाह से दुआ मांगी जाए। उदउनी अस्तजिब लकुम, है ना, कहा कि अपने रब से मांगो और तुम्हारा रब तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। इस आयत में मुफस्सरीन ने दुआ के दो मानी बयान किए हैं, इसको आप नोट कर लें। एक मानी है जो अक्सर मुफस्सरीन ने बयान किए हैं कि दुआ से मुराद इबादत है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। और हमें हदीस में भी जो है वो ये पता चलता है, मुस्नद अहमद की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा और अद्दुआ मुखुल इबादा, के दुआ जो है वही इबादत है, और कहा कि इबादत का मगज जो है ये दुआ है। तो वो लोग जो मेरी इबादत से किब्र करते हैं, इसके माने क्या हैं कि मेरी अतात से वो किब्र करते हैं। बात कहते हैं यहां पे दुआ जो है ये दुआ के माने में है, अपने मांगने के माने में, किसी से सवाल करने के माने में यहां पर इस्तेमाल हुई है। आयत नंबर 60 सूरत अल मोमिन की, इसमें जो है वो तीन बातें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये कि इंसान आमतौर पे उससे मांगता है जिसके पास अथॉरिटी हो, पावर हो, या उसके पास कुछ हो, आप उसी से मांगते हैं ना। अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा दुनिया में इंसान को किसी से अगर उम्मीद होती है तो उसके वालदैन हैं। और आप देखें कि आपकी शादी हो गई और वक्तन फक्तन आपको मुख्तलिफ चीजों की जरूरत पेश आती है, आपके वालदैन आपकी बहुत मदद करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है वो भी तंग आकर कहते हैं कि आखिर कब तक, हमारी और भी बेटा जिम्मेदारियां हैं, अब तुम जो है वो अपने आप को खुद संभालो। और आपको मांगते हुए शर्म भी आती है ना कि अब क्या करें ना, कैसे कहें, तो जबान गुंग हो जाती है ना। और इसी तरह अपने दोस्त अहबाब और जानने वालों से भी बाज़ औक़ात सोचते हैं कि अपनी जरूरत को लिखें, फिर क्या करते हैं कि कहते हैं कि वो क्या कहेंगे ना, तो और फिर ये भी सोचते हैं कि उनके तो अपने हालात ठीक नहीं है तो वो कैसे मदद कर सकते हैं। तो पहली चीज जो सामने आती है वो क्या है कि इंसान उसी से मांगता है जिसके बारे में उसको ये समझ हो कि वाकई उसके पास पावर है, अथॉरिटी है, उसके पास कुछ ऐसे ज़राए वसाइल हैं जिससे वो मेरी तकलीफ को दूर कर सकता है या मेरी जरूरत को पूरा कर सकता है। तो ये जो अथॉरिटी है और जो ज़राए और वसाइल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह के पास है। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है, किसी के बारे में अगर कोई सोच भी ले कि फलां से भी मैं दुआ मांग सकता हूं या मांग सकती हूं और वो भी मेरी मदद कर देगा, तो जरूरी नहीं कि उसकी ये सोच दुरुस्त हो। जैसे नबी, फरिश्ते, जिन, फर्जी देवता, उनके पास इख्तियारात तो नहीं थे और है नहीं, लेकिन लोग उनके बारे में भी ये अकीदा रखते हैं, तो ये चीज जो है ये भी सही नहीं है। फिर तीसरी अहम बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी जो हाजतें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह ही के सामने जो है वो पेश करनी चाहिए। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें जो है वो दूंगा। तो दुआ करना ऐन इबादत है, और अल्लाह ताला यहाँ पे नाराज हो रहे हैं कि जो लोग दुआ नहीं मांगते, दरअसल उनके अंदर तकब्बुर पाया जाता है। तो दुआ मांगना ऐन इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की फजीलत और उसकी शराइत और उसके आदाब बताए हैं, और बहुत सी हमें इसके लिए अहदीस मिलती हैं। चंद एक मैं आपके सामने रखती हूं, और हमें जो है बाज आप देखें, आप में से भी बाज लोग जो हैं, या हम लोग, हम खुद अपने लिए नहीं दुआ मांगते, लेकिन हम दूसरों उसके बारे में सोचते हैं कि वो हमारे लिए दुआ मांगे। ठीक है, दूसरों से और खासतौर पे नेक लोगों से दुआओं के लिए कहना, ये भी जो है वो हमें पता चलता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से भी इसकी रहनुमाई मिलती है, लेकिन अपने लिए जरूर दुआएं मांगनी चाहिए। और मुझे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह का यह कॉल बड़ा मुतासिर करता है। वो कहा करते थे कि मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, उमर मुझे ये यकीन है कि तेरी दुआ कबूल होगी, मुझे फिक्र इस बात की है कि उमर तुझे दुआ मांगने की तौफीक नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उन्होंने फरमाई है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो दुआएं मांगनी चाहिए, और खास तौर पर दुआओं के आदाब का ख्याल रखें और औकात का ख्याल रखें। नेकी करके अगर दुआ की जाए तो कबूल होती है, मसलन आपने कुरान की तिलावत की है फर्ज नमाज के बाद, तहज्जुद की नमाज के बाद, इसी तरह हज और उमरे के दौरान बाज जगह ऐसी हैं, फिर मुसीबत ज़दा, बीमार, परेशान हाल, मुसाफिर, इनकी दुआ भी कबूल होती है। और दुआ मांगने के लिए जरूरी है कि पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की जाए। मसलन आप दुआ मांगना चाह रही हैं तो आप जो है सूरत फातिहा पढ़ लीजिए, आपके पास टाइम नहीं है पहली दो तीन आयतें पढ़ लीजिए जिसमें अल्लाह की हम्दो सना बयान की गई है, फिर दुरूद शरीफ भेजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर उसके बाद जो है आप दुआ मांगे और फिर अपने हाथ जो आपने उठाए हुए हैं उसको अपने चेहरे पर जो है वो फेर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी है अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो, कि जो अल्लाह से दुआ नहीं मांगता अल्लाह इस पर गजबनाक होता है। अच्छा, यहां पर मैं एक और बात आपके सामने रखूं, जैसे बाज लोग सोचते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में जो लिखना था वो तो लिख दिया है, वो फैसला तो होकर रहेगा, तो अब दुआ मांगने का क्या फायदा। तो इस सिलसिले में आप ये बात याद रखें कि वो जो भी फैसला किया है अल्लाह ने, वो अल्लाह ने किया है ना, और अगर अल्लाह चाहे तो अपने फैसलों को बदल भी सकता है, क्योंकि अल्लाह के पास ताकत है कि वो अपने फैसलों को बदल दे। और जब कोई बंदा अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाह से इल्तजाएं करता है, अल्लाह से गिरिया जारी करता है, अल्लाह के सामने अपना दामन फैलाता है, तो अल्लाह जो है वो चाहे तो अपने फैसलों को बदल भी देता है। और ये एक अहम बात है, क्योंकि हमें हदीस से ये बात पता चलती है, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को कोई चीज नहीं टाल सकती मगर दुआ, कि अल्लाह के फैसले को बदल देने की ताकत किसी में नहीं है मगर अल्लाह खुद अपना फैसला बदल सकता है, और ये उस वक्त होता है जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है। ये कितनी खुशखबरी की बात है ना, ये बहुत ही प्यारी बात है कि मायूस नहीं हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो, ना उम्मीद ना हो, हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, मुसीबत बहुत ही सख्त क्यों ना हो, आजमाइश बहुत ही शदीद क्यों ना हो, रात कितनी ही अंधेरी और तवील क्यों ना हो, कभी परेशान नहीं होना चाहिए। और मैं तो अक्सर ये बात सोचती हूं कि जहां ईमान है वहां डिप्रेशन नहीं हो सकता, जहां ईमान है वहां नाउम्मीदी नहीं हो सकती, क्योंकि मोमिन किसी हाल में मायूस नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सख्त हालात किस पर गुजरे होंगे, लेकिन आपसे ज्यादा मुस्कुराने वाला किसी को नहीं देखा। साहबाए कराम कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुस्कुराने वाला किसी को नहीं देखा, तो आइए मुस्कुराएं, आइए फीकी चाय पिए मुस्कुराते हुए, आइए जो भी फैसले हैं, जो भी हालात हैं, उनको हम कबूल कर लें। मसलन शुगर हो गई है तो आपका रोना धोना शुगर को खत्म तो नहीं कर देगा, ब्लड प्रेशर हो गया है, हार्ट पेशेंट है, आप रोए धोए, आप परेशान हो, तो इससे बीमारी में इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं हो सकती। तो क्या करना है, आइए फीकी चाय पिए मुस्कुराते हुए। जो भी हमारे हालात हो रहे हैं, हालात में तब्दीली आ रही है, उसको हंसते मुस्कुराते कबूल कर लें, तो उससे क्या होता है कि फिर आपको कोई शौक नहीं लगता, आप परेशान नहीं होते, और आप अपनी जिंदगी के जो मुख्तलिफ मराइल हैं उनको आप हंसते मुस्कुराते जो है वो तय करते चले जाते हैं। तो आपको ऑप्टिमिस्ट बनना है। फिर दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि दुआ खा कबूल हो या ना हो, बहरहाल उसका बहुत बड़ा फायदा है कि जब इंसान अल्लाह के सामने अपनी दुआएं रखता है तो इस बात का इतराफ करता है कि अल्लाह तू आका और मैं तेरा बंदा, और इंसान जो है अपनी आजजी का इजहार करता है, अपनी बेबसी का और अबूदियत का, और ये चीज अल्लाह को बहुत पसंद आती है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब कभी अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह उसे या तो वही चीज देता है जिसकी इसने दुआ की थी, या उसी दर्जे की कोई बला उस पर आने से रोक देता है, बशर्ते कि वो किसी गुनाह की या कतार रहमी की दुआ ना करे। और ये हदीस जो है इसे तिर्मिजी ने रवायत किया है। मसलन आप देखें, बीबी मरियम की वालदा ने जो है वो सोचा था कि मेरे पेट में बेटा है और अल्लाह मुझे बेटा देगा और मैं उसको अल्लाह के लिए वक्फ कर दूंगी, और जब वो बेटी होगी तो परेशान होगी, कहने लगी कि ये तो बेटी हो गई है। लेकिन अब आप देखें कि अल्लाह ने बीबी मरियम से क्या काम लिया ना, है ना, कहा कि तुझे दुनिया की औरतों पर मैंने मुंतखब कर लिया, इस्तफा की, तो अल्लाह ने उनको चुन लिया था। तो बाज़ औक़ात आप एक चीज मांगते हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ और चाहते हैं, तो उसी में यकीनन हमारे लिए खैर है, फिर हम अल्लाह के फैसले पर हमें राजी हो जाना चाहिए। अच्छा, दुआ की कबूलियत का अंदाज क्या होता है? जैसे आपके जहन में ये सवाल आएगा कि मैं तो इतनी दुआएं मांगती हूँ और मैंने जिंदगी में बहुत सी दुआएं मांगी, लेकिन मेरी कबूल क्यों नहीं हुई? सब तो नहीं कबूल होती ना। दुआ की कबूलियत के तीन अंदाज हैं। नंबर एक, एक मुसलमान जब भी कोई दुआ मांगता है, बशर्ते कि वो किसी गुनाह की दुआ ना हो, कतअ रहमी की दुआ ना हो, तो अल्लाह ताला उसे तीन सूरतों में से किसी एक शक्ल में कबूल करता है, या तो वो दुआ इसी दुनिया में कबूल कर ली जाती है। नंबर दो, या उसे आखिरत में अजर देने के लिए महफूज कर लिया जाता है। नंबर तीन, या उसी दर्जे की किसी मुसीबत को उस पर आने से रोक दिया जाता है। फिर यहां पर यह बात भी बहुत अहम है कि जब आप दुआ मांगे तो आप जो हैं बड़े यकीन के साथ दुआ मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रवायत है, रावी है अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो, कि जब तुम में से कोई शख्स दुआ मांगे तो यूं ना कहे कि खुदाया मुझे बख्श दे अगर तू चाहे, मुझ पर रहम कर अगर तू चाहे, मुझे रिस्क दे अगर तू चाहे, बल्कि उसे कतई तौर पर ये कहना चाहिए, खुदाया मेरी फला हाजत पूरी कर, अल्लाह मुझे तुझसे लेना है, अल्लाह तू मेरी ये दुआ जो है पूरी कर, आप मेरी ये जरूरत पूरी करें, अल्लाह मुझे नहीं पता मैं तेरे दर को छोड़कर और कहां जाऊं, तेरा दर है और मेरा सर है, तू है और मेरा दामन है और मेरे उठे हुए हाथ हैं, और अल्लाह मुझ गरीब और बेबस और जरूरतमंद को अल्लाह तू ये मेरी जो जरूरत है तू उसको पूरा कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से दुआ मांगो इस यकीन के साथ कि वो कबूल करे तो वो कबूल कर लेगा। और अच्छा, हमें ये भी पता चलता है, ये सही मुस्लिम की रवायत है, रावी है अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ कबूल की जाती है बशर्ते कि वो किसी गुनाह या कतअ रहमी की दुआ ना करे और जल्दबाजी से काम ना ले। पूछा गया, जल्दबाजी क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया, जल्दबाजी ये है कि आदमी कहे मैंने बहुत दुआ की मगर मैं देखता हूं कि मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं होती, और ये कहकर आदमी थक जाए और दुआ मांगनी छोड़ दे। तो इससे क्या बात पता चलती है? कभी मायूस नहीं होना, कभी मायूस नहीं होना। कितने साल क्यों ना गुजर जाए कुछ मांगते हुए, मुसलसल मांगते रहे, और कयामत के दिन इंसान जब दुआओं के कबूल ना होने का अजर देखेगा तो उस दिन ये तमन्ना करेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ भी कबूल ना हुई होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी हैं अब्दुल्ला बिन उमर और मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हो, रवायत है तिर्मिजी और मुसनद अहमद की, कि दुआ बहरहाल नाफे है उन बुलाओं के मामले में जो नाजिल हो चुकी हैं और उनके मामले में भी जो नाजिल नहीं हुई, बस ए बंदगाने खुदा तुम जरूर दुआ मांगा करो। अच्छा, मामूली से मामूली चीज क्यों ना हो, आप उसके लिए भी दुआ मांगे, जैसे जूती का तस्मा भी टूट जाए तो भी अल्लाह ही से मांगना चाहिए। और जब इंसान अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह गैब से जो है मदद करता है, अफलाक से आता है नालों का जवाब। आखिर दारुल ईमान ने दुआओं पर, कुरान और सुन्नत की दुआओं पर मुश्तमिल बड़ी ही एक खूबसूरत किताब को मुरतब किया है, फजकरूनी के नाम से, और इंशाल्लाह आप इसे पढ़ेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस दुआ को आप जो है वो खोल कर मांगती रहें यहां तक कि आपको सारी दुआएं जो है वो याद हो जाए। तो ये आयत नंबर 60 जो है ये हमें पैगाम देती है, ये हमें बताती है कि अल्लाह के हुजूर मांगने की कितनी अहमियत है और अल्लाह को ये बहुत पसंद है, और मांगने से अल्लाह खुश होता है, नाराज नहीं होता, और ना मांगने पर अल्लाह नाराज होता है। और जब बंदा सही तरीके से, सही अदाब से, सही औकात में दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 61 और 62, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दलाइल दिए हैं तौहीद के और आखिरत के। अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही वन्नहारा मुबसिरा, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी लगती है रात, है ना? सुबह के आप उठे हुए और कोहलू के बैल की तरह आप चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और फिर जो ही शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, और आप जो है बिस्तर पर लेटते हैं और आपको नींद आ जाती है, आपको ऊंग आ जाती है, और दिन भर की थकन जो है वो दूर हो जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो। एक आदमी जो था वो एक फैक्ट्री बनवा रहा था, एक मिल बनवा रहा था, बहुत ही अमीर कबीर आदमी। और जब उसकी वो फैक्ट्री बन रही थी तो उसका हाल क्या था कि उसे नींद नहीं आती थी, दर दौलत बहुत और जो उसको टेंशन और सब कुछ, तो और वो रात के वक्त जो है वो सोते हुए नींद की गोलियां खाता था। और एक दिन जब वो फैक्ट्री से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक मजदूर जो है उसने अपनी मजदूरी के मजदूरी करते करते, जैसे मजदूरों को ब्रेक मिलती है ना, तो उसकी ब्रेक का टाइम था, और मजदूर जो है अखबार बिछाए हुए, अखबार के चंद टुकड़े बिछाए हुए अपने हाथ का तकिया बनाकर वो गहरी नींद सो रहा था और खराटे ले रहा था। तो आदमी कहने लगा कि ये मजदूर जो है, जो कि गरीब आदमी है, ये मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत है, इसको कोई गोलियां नहीं लेनी पड़ती, इसके नीचे कोई नरम और बिस्तर नरम गरम बिस्तर नहीं है, ये किसी महल में नहीं रहता, इसके कोई भी हालात अच्छे नहीं है, लेकिन देखें ये नींद की दौलत से माला माल है कि सड़क के ऊपर फैक्ट्री बन रही है, खूब शोर हो रहा है, और ये मजे की नींद जो है ये सो रहा है। तो प्यारी बहनों, ये रात, ये नींद, ये बहुत अल्लाह की नेमत है, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो। तो रात के वक्त जो है वो सोना और सुकून हासिल करना ये आम है। अब हमारे यहाँ मुसलमानों में भी ये फैशन होता जा रहा है कि रात के वक्त जागते हैं, लेट नाइट और लेट मॉर्निंग, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। वो कहते हैं ना कि मुसलमानों के हमसाए में कोई हिंदू औरत थी और अपने बच्चे को जगा रही थी कि ओ मोहन लाल तेरा सत्यानाश, उठ तू कब तक मुसलमानों की तरह दिन चढ़े तक सोता रहेगा। वो अपने बच्चे को जगाते हुए कह रही थी कि बदनसीब उठ, ओ मोहन लाल उठ, अब इतनी सुबह हो गई है, तू क्या मुसलमानों की तरह दिन चढ़े तक सोता रहता है। तो उसने अपने जो मुसलमान देखे थे वो क्या था, वो दिन चढ़े तक सोते रहते थे। अब उस बेचारी को कौन बताए कि मुसलमानों के यहाँ तो फजर के वक्त, यानी अभी अंधेरा होता है तो नमाज फर्ज है और मुसलमानों को उठकर वो पढ़नी होती है, और फजर पढ़कर सोना नहीं होता, फजर की नमाज से ही दिन का आगाज हो जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मेरी उम्मत के बकूर में बरकत दे, यानी बकूर जो है ये दिन का इब्तदाई हिस्सा है, और जो शख्स अपने दिन की इब्तदा सुबह करता है उसके वक्त में बरकत होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कुरान का मिजाज है, जो इस्लाम का मिजाज है कि अर्ली नाइट और अर्ली मॉर्निंग, इसको जो है वो परवान चढ़ाना चाहिए, इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बगैर मजबूरी के रात देर तक जागना जो है ये सही नहीं है। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो, वन नहारा मुबसिरा, और दिन को रोशन किया। अब आप देखें कि दिन को जो रोशन बनाया है तो इसका मतलब क्या है कि जब सूरज निकल आता है तो लोग क्या करते हैं कि लोग जो है वो जॉब करते हैं और अपने जो मुख्तलिफ उनके काम होते हैं, जो जिंदगी का जो कारोबार है उसको आराम से करते हैं, उन्हें कुछ भी फिर मुश्किल नहीं होती। अगर आप गौर करें तो रात और दिन के अंदर एक तजाद है, एक कंट्राडिक्शन है, लेकिन इनके अंदर एक मुआफकत है। इनके अंदर आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ तावुन है। इन अल्लाह लजू फजलिन अलन्नासी वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी ला यशकुरून। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। तो ये रात और दिन जो है ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें मेरी बड़ी मसलतें हैं लेकिन तुम लोग इस पर शुक्र अदा नहीं करते। अच्छा, इसकी क्या मसलतें हो सकती हैं कि जिस तरह दिन और रात जो है वो एक दूसरे से मुतजाद है लेकिन ये के दोनों का अपना फायदा है, बिल्कुल इसी तरह से अगर दुनिया है तो इसके बाद जो है वो आखिरत जरूर होगी। और अल्लाह ने दुनिया बनाई तो उसका भी मकसद है कि इम्तिहान, और अल्लाह ताला ने आखिरत भी बनाई ताकि लोग जो है वो फिर आखिरत की तैयारी करें। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लोग अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते, ये बात बहुत डराने वाली है। प्यारी बहनों, शुक्र के मानी है कि जानवर को थोड़ा सा चारा मिल जाए तो जानवर जो है उस पर भी खूब दूध दे। थोड़ा सा चारा मिलने पर उसमें तरोताजगी पूरी हो और वो दूध ज्यादा दे। तो इसी तरह अगर इंसान शुक्र गुजार होता है तो कोई उसका थोड़ा सा भी काम कर दे तो इंसान उसका शुक्रिया अदा करता है। तो अल्लाह के एहसानात, उसकी नेमतों की नकदरी नहीं करनी चाहिए बल्कि अल्लाह के एहसानात, अल्लाह की नेमतों को दिल से माना जाए, जबान से इकरार किया जाए और फिर अमल से अल्लाह की शुक्र गुजारी की जाए। और बाज लोग जो हैं वो मुंह से कहते रहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है या फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं लेकिन अमली जिंदगी में वो हकीकी शुक्र अदा करने से बहुत दूर होते हैं। तो हकीकी शुक्र क्या है कि अमली जिंदगी में अल्लाह के अताक गुजार बंदे बनकर जिया करें। और आप देखें कि यहाँ पे रात और दिन का जिक्र करके शुक्र की तरगीब दिलाई जा रही है। तो शुक्र क्या है कि रात के सुकून में जो हमारा फर्ज है उसको अदा करें और दिन की रोशनी में अल्लाह ने जो हमारे लिए फराइज मुकर्रर कर दिए हैं हम उनकी अदायगी करें। माल दिया है अल्लाह का, माल समझकर उसको, माल जो है माली नेमत उसका हक अदा करें। जान दी है तो जान जो है उसको अल्लाह के रास्ते में जो है वो पुराना करें। जवानी दी है, सेहत दी है, फरागत दी है तो उसका जो है सही इस्तेमाल करें। तो ये है दरअसल अल्लाह का शुक्र अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसानों का शुक्र अदा ना करेगा वो अल्लाह का भी शुक्र अदा ना करेगा। मन ला यशकुरिन नासा ला यशकुरिल्लाह, ये तिर्मिजी की रवायत है। तो इससे ये बात पता चलती है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान का शुक्र अदा करे यानी उसको थैंक यू करे तो ये भी अल्लाह ताला के एहसानात की शुक्रगुजारी है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वही तो है अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। रात दिन, खालिकु कुल्ले शेई, हर चीज का खालिक ये है अल्लाह तुम्हारा रब। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये रात में सुकून देने वाला या दिन में रोशनी देने वाला ये है अल्लाह तुम्हारा रब। तुम्हारे माबूदों ने तो नहीं ये किया तो तुम एक अल्लाह की बंदगी क्यों नहीं करते। फअन्ना तुफकून, फिर तुम किधर बहकाए जा रहे हो, फिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों शिर्क करते हो। कज़ालिका युफकुल्लज़ीना कानू बिआयतिल्लाहि यजहदून, इसी तरह वो सब लोग बहकाए जाते रहे हैं जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। अब आप देखें कि यहां पर ये बात बताई जा रही है कि ये सब लोग हैं जो कि अल्लाह की आयात का जो है वो इनकार करते हैं। यजहदून जो है इसके मानी है किसी बात का इल्म हो जाने के बाद दीदा दानिस्ता इनकार करना, ऐसी बात का जबान से इनकार जिसे दिल से ही तस्लीम करता हो, यानी दिल से मान रहे हैं लेकिन जबान से जो है वो इनकार करते हैं। अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ध क़रारा, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाए करार बनाया। अब आप देखें कि जमीन जो है अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई कि हम उस पर जो है वो चले फिरे और उस पे जो है वो उसको उस पे हम आराम से रह सके, यानी जमीन को इंसान की रिहाइश के काबिल बनाया। और आपको ये बात पता ही है कि जमीन न लोहे की तरह सख्त है और ना ही पानी की तरह नरम है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको एक दरमियानी हैसियत में रखा है। और ये भी ये जो जमीन हमारे लिए गहवारा है तो ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है। वस्समा बिना, और ऊपर आसमान का गुंबद बनाया, तो आसमान को छत बनाया। वसव्वरकुम फअहसना सुवरकुम, फिर फरमाया जिसने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई, सुभान अल्लाह। अब आप देखें कि अब इंसान के वजूद से दलील दी जा रही है कि तुम्हारी शक्ल बनाई और इतनी खूबसूरत बनाई। अब आप देखें कि हर इंसान जो है वो अपने तौर पर मुकम्मल है, अल्लाह ताला ने इंसान को बड़े हुस्न व खूबी के साथ पैदा किया है। दूसरी मखलूकात के मुकाबले में इंसान की जो शक्ल है ये बड़ी ही बेहतरीन है और बड़ी ही खूबसूरत है। और इंसान जो है वो अल्लाह का शाहकार है, अल्लाह का मास्टरपीस है। और हमें दूसरे लोगों को देखकर ये तबसरा नहीं करना चाहिए कि उसकी नाक तो पकौड़ा है और उसकी आंखें बहुत ही चुन्नी चुन्नी हैं और वो तो ठिगनी है। जैसे हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने एक दफा हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा के बारे में ये बात कही थी कि सफिया का क्या ये ऐब कम है कि वो कद की ठिगनी है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा तुमने जबान से ऐसी गंदी बात निकाली है, ऐसी कड़वी बात निकाली है कि अगर उसको समंदर में डाल दिया जाए तो वो भी कड़वा हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को सख्त नापसंद किया। तो प्यारी बहनों हमें क्या करना चाहिए, जैसे आप देखें कि दूल्हे पे लोग तबसरा करते हैं, खूब करते हैं, दुल्हन पे करते हैं, आम लोगों को पे चलते फिरते खूब तबसरा करते हैं, हमें अल्लाह से डरना चाहिए कि अल्लाह किसी आजमाइश में ना डाल दे। और ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी, कि या अल्लाह जिस तरह आपने मेरी शक्ल को खूबसूरत बनाया है इस तरह मेरी मेरे इखलाक को भी खूबसूरत बना दे, मेरे किरदार को भी खूबसूरत बना दे। और जब भी शीशे में खड़ी हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने इखलाक की फिक्र करें और उदास ना हुआ करें कि मेरी आंखें छोटी क्यों हैं, मेरा रंग काला क्यों है और मेरा कद छोटा क्यों है और मेरा रंग सफेद क्यों नहीं है या मैं ऐसी क्यों नहीं हूं वैसी क्यों नहीं। दूसरों से मत मुकाबला किया करें, और दुनिया के मामले में अपने से नीचे को देखना चाहिए और दीन के मामले में अपने से आगे बढ़ने वालों को देखना चाहिए। वह रजा का कुम मिनत, तो ये बात जिसने तुम्हें पाकिजा चीजों का रिज्क अता किया। अब आप देखें कि जमीन जो है उसको ठिकाना बनाया, आसमान को छत की तरह, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें खूबसूरत जिस्म दिया और उसके साथ ही फिर अल्लाह ताला ने तरह तरह की पाकीज़ा चीजों का हमें रिज़्क़ अता किया। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, वही है अल्लाह जिसके ये काम है जो तुम्हारा रब है। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बेहिसाब बरकतों वाला है वो कायनात का रब। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, फरमाया कि फतबारक अल्लाह, बस बहुत बाबरकत है अल्लाह रब जहानों का, बेहिसाब बरकतों वाला है वो कायनात का रब। तो जिस रब ने ये सारा कुछ आपके लिए किया, अब आप देखें कायनात से दलाइल हैं, इंसान के वजूद से दलाइल हैं, तो इंसान फिर तेरा फर्ज क्या बनता है? हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुआ, वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फदउहु मुखलिसीना लहुद्दीन, उसी को तुम पुकारो अपने दीन को उसके लिए खालिस करके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अब आप देखिए कि यहां पर जो है वो उसी अल्लाह की बंदगी करने का हुक्म दिया जा रहा है, फरमाया जा रहा है कि इसी अल्लाह की बंदगी करो, अपने आप को उसके लिए मुखलिस करके। खुदा के लिए दीन को खालिस करना क्या है? कि कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए और अल्लाह के सिवा किसी से दीनी और मजहबी किस्म का लगाव नहीं होना चाहिए। और ये काम सारे के सारे किसी इंसान ने तो नहीं किए, अल्लाह ने किए हैं, तो फिर अल्लाह ही इस काबिल है कि अल्लाह ताला की जो है वो बंदगी की जाए। तो ये सारे वाकयात, ये सारे दलाइल, ये सारी निशानियां जो है वो इस नतीजे पर इंसान को लेकर आती हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। नंबर दो, इखलास के साथ अल्लाह के लिए बंदगी की जाए। नंबर तीन, हकीकत ये है कि तारीफ अल्लाह ही के लिए है। तो ये सारी बातें देखने और सुनने के बाद जबान से अल्लाह की हमदो सना के तराने जो हैं वो बुलंद होने चाहिए, हमदो सना के गीत गाने चाहिए, अल्लाह का शुक्राना बजा लाना चाहिए। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, ला बिशय्यिन मिन निअमति रब्बिना नुकज्जिब। फिर आप देखिए कि ये आयत नंबर 66 है, 66, और इसमें जो है वो मनाजरा बाजों को फैसला कुन जवाब दिया गया है। कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लम्मा जाअनियल बय्यिनातु मिन रब्बी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कह दीजिए, इन्नी नुहीतु, बेशक मुझे मना कर दिया गया है, अन आबुदा, कि मैं इबादत करूं, अल्लज़ीना, उन हस्तियों की मैं इबादत करूं, अल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि, जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, तो मुझे तो उनकी इबादत से मना कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी इबादत लफ्ज दो मानों में इस्तेमाल हुआ है, इबादत और दुआ के माने में। ना मैं उनसे दुआ करूंगा और ना ही मैं उनकी इबादत करूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया है। और मैं ये काम आखिर कर भी कैसे सकता हूँ, लम्मा जा नियल बय्यिनातु, जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से बय्यिनात आ गई है। बय्यिनातु मेरे रब भी, मेरे रब की तरफ से बय्यिनात, रोशन निशानियां आ चुकी हैं। वा उमिरतु अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सरे तस्लीम खम कर दूं। तो आप देख लीजिए कि यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि आप जो हैं वो अल्लाह की अतात करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने आप को झुका दें। फिर आप देखिए ये आयत नंबर है 67, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के चंद वाकयात का जिक्र किया है। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह ही तो है, खलककुम मिन तुराबिन, जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, थुम्मा मिन नुत्फातिन, फिर नुत्फे से, थुम्मा मिन अलकतिन, फिर खून के लोथरे से, थुम्मा युख्रिजुकुम तिफ्लन, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकाल लाता है, थुम्मा ले तबलुगु अशुद्दकुम, ताकि तुम पूरी जवानी को, ताकत को पहुंच जाओ, थुम्मा ले तकुनु शुयूखा, फिर वो तुमको बढ़ाता है ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंचो, फमिनकुम मन युतवफ्फा मिन कबलु, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है, यानी पैदा होने से पहले और कोई जवानी को पहुंचने से पहले और कोई बूढ़ा होने से पहले उसे मौत आ जाती है। वले तब लोगू अजलम मुसम्मन, ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने मुकर्रर वक्त तक पहुंच जाओ, वलअल्लकुम ताकिलून, और इसलिए कि तुम हकीकत को समझो। अब आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र किया है। पहला मरला क्या है कि बेजान मादा का तब्दील होकर जानदार चीज बन जाना, है ना, कि मट्टी, इंसान किससे पैदा हुआ, मट्टी से। फिर दूसरा क्या है, सुम्मा मिन नुत्फतिन, फिर नुत्फे से, फिर सुम्मा मिन अलाकतिन, फिर खून के लोथरे से, फिर सुम्मा युखरिजुकुम तिफलन, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में पैदा करता है, ये चौथा दर्जा है। पांचवा, फिर वो तुम्हें पूरी ताकत पहुंचाता है, सुम्मा लितबलुगू अशुद्दकुम। फिर छठा क्या है, सुम्मा लितकूनु शुयूखा, फिर वो तुम्हें बुढ़ापे तक पहुंचाता है, और फिर तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम मुकर्रर वक्त तक पहुंच जाओ, और वो मुकर्रर वक्त जिस तक इंसान को पहुंचना है, और वो है अल्लाह के सामने हाजिरी, जहां पे इंसान अल्लाह के सामने जो है वो अपने अमाल का जो है वो जवाब देगा। तो ये इंसान के जो जिंदगी में मराहिल आते हैं कि बेजान मादा तब्दील होकर जानदार चीज बनता है, फिर इंसान मुख्तलिफ मराहिल से नशोनुमा पाता है, जवानी को पहुंचता है, फिर आदमी पर बुढ़ापा तारी होता है, फिर इंसान जिंदा होकर मर जाता है, कभी कम उम्र में, कभी ज्यादा उम्र में। तो ये मुख्तलिफ जो बातें हैं, ये मुख्तलिफ जो वाकयात हैं, ये एक अल्लाह है जो कादिर है, और उसके फैसलों में हिकमत भी है, और वो अपने फैसलों पर गालिब भी है। तो अल्लाह जिसने ये सब कुछ किया है, तो ये सब कुछ किस लिए किया है, ताकि इंसान जो है अल्लाह के सामने हाजिर हो और अपने ईमान की जो है वो जवाबदेही करे। वलअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम इस हकीकत को समझो कि मरना है, इंसान जो है किसी एक जगह पर ठहरा हुआ नहीं है, और अल्लाह को अपने अमाल की जवाबदेही करनी है। हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, और वो अल्लाह ही तो है जो तुम्हें जिंदगी देने वाला और वही मौत देने वाला है। फैजा कदा अमरन फइन्नमा यकूलू लहू कुन फयकून, वो अल्लाह ही तो है कि वो जिस बात का भी फैसला करता है, बस एक हुक्म देता है कि वो हो जाए, और फिर वो हो जाती है। तो ये हमारा जो सबक है सूरत अल मोमिन का, इसमें हमारे सामने अमल के लिए क्या उसूल आते हैं, यानी आयत नंबर 47 से लेकर आयत नंबर 68 तक। इसमें पहली बात जो हमारे लिए आती है वो ये है कि हमें योमुल अशहाद जो है, व योमा यकूमुल अशहाद, उससे डरना चाहिए कि उस दिन जो है हमारा हाल क्या होगा। फिर दूसरी बात हमें पता चलती है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबर करने के लिए कहा गया, हालांकि आप सबर का और इस्तकामत का पहाड़ थे, तो हमें भी अपनी मौजूदा जिंदगी में सबर जो है वो करना चाहिए। और सबर पे लेक्चर देना भी बहुत आसान है, सबर पे तकरीर करना भी बड़ी आसान है, इस पे किताबें लिखना भी बड़ा आसान है, लेकिन अमली जिंदगी में सबर करना ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वतवासौ बिसबरी वतवासौ बिलहक, सबर करना भी चाहिए और एक दूसरे को सबर की नसीहत करनी चाहिए। फिर तीसरी और अहम बात जो है वो शुक्रगुजारी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको जिस हाल में रखा है, हम बहुत अच्छे हाल में हैं। आप जरूर अपनी दूसरी बहनों के हालात का जायजा लिया करें, उस पर गौर व फिक्र किया करें, और फिर घड़ी घड़ी पल पल लम्हा लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि और बहनें जिन आजमाइशों से गुजर रही हैं, अल्लाह ताला ने हमें उनसे जो है वो अच्छी हालत में रखा है। और जब हम जो है वो दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखेंगे, तो यकीनन हमारे अंदर जो है वो सब्र की और शुक्र की कैफियत जो है वो पैदा होगी। और तीसरी अहम बात जो है, आप अगर सूरत अल मोमिन, जिसे सूरत गाफिर भी कहते हैं, अत्तौल भी कहते हैं, अगर आप इसका जायजा लें, तो आप देखेंगी कि काफिरों के इनकार की एक बड़ी वजह उनका तकब्बुर था, उनका फख्र गुरूर था। अब हमें ये जायजा लेना है कि कहीं हमारे अंदर फख्र गुरूर तो नहीं पाया जाता। यानी अगर आप कल के सबक का भी आप जायजा लें, आपने कल जो पढ़ा था सूरत अल मोमिन पढ़ी थी, तो उसमें भी काफिरों की क्या सिफात हमारे सामने आई थी। उनमें से आप देखें कि मैं गौर कर रही थी कि उनमें काफिरों की एक सिफत तो ये आई थी कि वो मुसरिफ थे, असराफ करने वाले, नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले थे। ये आयत 34 सूरत अल मोमिन में आपने पढ़ा। फिर उनकी दूसरी सिफत थी मुर्ताब और शक इख्तियार करने वाले। फिर तीसरी सिफत थी युजादिल, झगड़ेबाज, बहसें करने वाले। कहीं आप तो नहीं हर वक्त झगड़ा करती रहती। फिर उसके बाद उनकी चौथी सिफत थी मुतकब्बिर, के किब्र करने वाले। और फिर उनकी एक सिफत थी कि वो जब्बार थे। तो इससे ये बात पता चलती है कि अल्लाह को फख्र गुरूर जो है ये सख्त नापसंद है। और जो फख्र करते हैं, जो गुरूर करते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो उनका ठिकाना जो है वो जहन्नुम है। और आमतौर पे इंसान जो है वो फख्र गुरूर जो है वो कब करता है? इंसान आमतौर पर फख्र गुरूर कब करता है? जब इंसान जो है वो अपने आप को दौलतमंद समझता है, जब वो उसके पास कोई इक्तदार होता है, जब उसके पास जो है वो दौलत होती है, जैसे फिरौन था, हामान था। और तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि हमें जो है अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि कहीं मेरी चाल में, मेरी गुफ्तगू में, मेरे लेने देने में, मेरे इखलाक में तकबर तो नहीं पाया जाता। सूरत अल फुरकान में आप पढ़ चुके हैं, वाइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौनन वाइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। सूरत लुकमान में आप पढ़ चुकी हैं, बनी इसराइल में पढ़ चुकी हैं। लुकमान में आपने पढ़ा था ना, और लोगों से बेरुखी ना कर, वला तो साइर खद्दा का लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दी मराहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो बुरी सिफात हैं उनसे हमें पाक रखे, हमें दूर कर दे। और जैसे जो मुतकब्बिर लोग होते हैं, जहां सब लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, जैसे दावत में वो सबके साथ बैठना नहीं चाहते, वो सबसे मिलना नहीं चाहते, वो सलाम नहीं करते, वो दावत कबूल नहीं करते, वो जो है वो अपने आप को बड़ा समझते हैं और अपना एक स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। और जो मुतकब्बिर नहीं होते, उनके अंदर आजजी और इनकसारी पाई जाती है, वो हर तरह के लोगों से घुल मिल जाते हैं और हर तरह की चीजों को इस्तेमाल कर लेना। और इसका ये नहीं मतलब कि मसलन अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है और आप अगर अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अच्छी चीजों का इस्तेमाल करें, आप कर सकती हैं, बशर्ती कि अगर आपके अंदर जो है वो किबर ना पाया जाता हो। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला दुनिया की जिंदगी का मुझे और आपको सही शऊर दे दे, दुनिया की जिंदगी की हकीकत समझा दे। और दुनिया की जिंदगी की हकीकत यह है कि ये पानी का एक बुलबुला है। दुनिया की जिंदगी की हकीकत यह है कि ये अगर आज बहार है तो कल खिजां है, आज जिंदगी है तो कल मौत है। और दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, सिमट जाए तो लम्हा बन जाती है। अल्लाह करे कि मैं और आप इस दुनिया की हकीकत को समझते हुए मालो दौलत पर इतराने की बजाय आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह ताला मुझसे और आपसे राजी हो, हम सबको हुस्ने अमल करने वाला बनाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत माल और औलाद में नाजमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।